खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी तरबियत और हौसला अफजाई के लिए कुछ सीखें आए हम खुदा के हजूर झुकें। जैसे अभी अभी हमने गाया कि खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें राह दिखाऊंगा, तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। और ये वाकया ही दुरुस्त और सच है, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। सुआए हम उससे हिकमत और दनाई और आज की रहनुमाई मांगे कि हम उसके नूर, उसकी जिंदा आवाज़ को सुनते हुए आज के दिन को गुजारें। आए हम दुआ करें। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मसीह यसु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, तेरे कलाम के लिए। आज खुदा बाप अपनी रहनुमाई में हम सबको चलना सिखा, ताकि सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। हम सब कम होते जाएं, तू बढ़ता जाए। तेरे ही पाक और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें। इफ़्सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 4 बाब, हम उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें खुदा का बंदा पालूस रसूल हर एक खिदमत, जिम्मेदारी और खुदा की तरफ से दी हुई नेमतों और तोहफों और बरकतों के बारे में सिखाते हुए कहता है। और यहाँ पर यूं लिखा है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को चरवा बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजगीरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। जैसा कि कल हमने रसूल और नबी के बारे में सीखा कि उनकी जिम्मेदारी, उनकी बुलाहट, उनकी मखसूसियत और उनको दी गई ये नेहमत और जिम्मेदारी किसकी तरफ से होती थी? खुदा की तरफ से। और इस मौजूदा दौर में जब हम देखते हैं तो रसूल हमें ज़मीन पर नज़र नहीं आते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों से जी उठने के बाद रसूलों ने खिदमत को किया और दुनिया की जिस भी हद तक, जिस भी मुल्क तक वो पहुंच सके वो पहुंचे, और उसके बाद वो सब इस ज़मीन पर से रुखसत होकर खुदावंद अपने खुदा के पास चले गए। और फिर नबियों को देखते हैं कि पुराना नामा 39 की 39 किताबों को नबियों ने लिखा, नबूवतें की यीशु मसीह के आने के बारे में, उसकी पैदाइश के बारे में, उसके मौजजात के बारे में, खुदावन के कहर के बारे में, खुदावन की निजात के बारे में, उसकी रहनुमाई के बारे में, नए यरूशलम के बारे में, मसीह के जी उठने के बारे में और उसके दुख उठाने के बारे में और उसकी पैदाइश के बारे में। सो अब इस जमीन पर और कोई नबी भी मौजूद नहीं है, क्योंकि खुदावन खुदा ने नबियों को इसीलिए मुकर्रर किया था ताकि वो बाइबल मुकद्दस को लिख सकें। सो अब इस जमीन पर नबी भी और मौजूद नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि जो खिदमत इस जमीन पर دستیاب ہے جو لوگوں کو کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہ خدمت کو دیکھیں گے۔ اور ہم سب نے دیکھا تھا کہ چرچ ایک بدن کی مانند ہے، جیسے بدن میں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور منہ ہوتا ہے، ویسے ہی مسیح کے بدن میں ہاتھ پاؤں ان لوگوں کو ظاہر کیا گیا ہے جو مسیح کے لیے کام کرتے ہیں، آنکھیں ان لوگوں کو ظاہر کی گئی ہیں جو انتظام یا انتظامیہ کی ذمہ داری لیتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، منہ اس بات کو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو لوگ خدا کا کلام سناتے ہیں، جس میں پادری صاحب، جس میں مبشر اور پھر مسیح کے گواہ آ جاتے ہیں۔ اور جب ہم سر کو دیکھتے ہیں تو سر مسیح کو جیسے بدن کا سر ظاہر کیا گیا ہے، ویسے ہی کلیسیا کی رہنمائی کے لیے خدا نے چرواہوں کو، خادموں کو مقرر کیا ہے کہ وہ کیا ہوں، رہنما ہوں، قیادت کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے آج ہم لفظ مبشر پر غور کریں گے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، خدا باپ نے بعض لوگوں کو رسول ہونے کی خدمت بخشی تھی، بعض لوگوں کو نبی ہونے کے لیے بلایا گیا تھا، جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ یرمیہ کو نبی ہونے کے لیے خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں مقرر کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بعض کو مبشر، مبشر اس شخص کو کہتے ہیں جو انجیل کی منادی کرتا ہے، جو انجیل کی کیا کرتا ہے، منادی کرتا ہے۔ اور یہ مبشر کی خدمت ایک خاص خدمت ہے، اس میں خداوند خدا کسی نہ کسی شخص کو، کسی نہ کسی عورت کو، کسی نہ کسی نوجوان عورت کو، مرد کو چنتا ہے، برکت دیتا ہے کہ وہ مبشر کی خدمت کو سر انجام دے، خاص کر نوجوانوں کو، نوجوانوں تک پہنچنے کے لیے مبشر کی خدمت دی جاتی ہے، عورتوں مردوں کو خوشخبری کا پیغام سنانے کے لیے۔ تو مبشر کیا کرتا ہے، وہ جا کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے، وہ کس لیے زمین پر آیا، اس نے کون سے عجیب عجیب کرامات کیے، وہ کس طرح اس زمین پر دکھ اٹھایا اور کس طرح وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی میں خدا سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ تو میں سادہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب ہی مسیح کے گواہ بنیں، ہم سب کو مبشرانہ خدمت ملی ہے، اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے کام کاج کی جگہ میں، اپنے کلونی میں، اپنے شہر میں، جہاں کہیں بھی جائیں ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے، مسیح کی گواہی ہونی چاہیے۔ اس لیے مبشر کی خدمت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں فلپس مبشر کا ذکر ملتا ہے۔ یہ فلپس مبشر تھا، جو اس کا کام کیا تھا، یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب پالوس اور دوسرے شاگرد زمین پر موجود تھے تو یہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو خوشخبری کا پیغام دیتا تھا۔ تو خوشخبری کا پیغام تھکے ماندے لوگوں کے لیے کس طرح ہے، میرے ساتھ دیکھیں۔ خوشخبری دینے والے کے لیے خدا کا کلام یوں کہتا ہے، رومیو 10 باب اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور جب تک وہ بھیجا نہ جائے منادی کیوں کرے۔ مبشر کی خدمت ایک خاص خدمت ہے جس کے لیے انسان خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے کہ وہ جا کر مسیح کی منادی کرے، کہ لکھا ہے کہ وہ جب تک بھیجا نہ جائے کیوں کر منادی کرے، منادی کیوں کر کرے۔ چنانچہ لکھا ہے، کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، ان لوگوں کے قدم بہت ہی مبارک ہوتے ہیں جو خوشخبری کا پیغام دیتے ہیں۔ आप सबको पता है कि यीशु मसीह ने अपनी इब्तदाई खिदमत में शुरू ही में जो अपना पहला पैगाम जिसे कह सकते हैं यीशु मसीह ने हैकल में दिया, जब यीशु मसीह बियाबान से लौटे तो लूका की इंजील में क्या लिखा है 4 बाब में कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे इसलिए चुना कि गरीबों को खुशखबरी, अंधों को बनाई, कैदियों को रहाई और कुचले हुओं को आजाद होने की खुशखबरी दो और उन सबको खुदा के बारे में बताऊं। तो खुदावन खुदा हम सबसे भी चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी अपनी खिदमत को जाने। हम सब के लिए कोई ना कोई खुदा का मकसद है। हो सकता है आप में बथेरे हैं जो मुबशर की खिदमत रखते हैं, जिसमें बहनों को ये खिदमत मिल सकती है कि वो सिर्फ औरतों और बच्चों में मुबशराना खिदमत करें, जैसे बहुत दफ़ा दूसरे ममालक से जैसे कैरी है वो औरतों और बच्चों में जाकर मुबशराना खिदमत करती हैं, जैसे दूसरी खुदा की खादमा आती हैं और वो क्या करती हैं मुबशराना खिदमत सर अंजाम देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपने जब मैं यहाँ पर होता हूँ तो मैं अगर किसी जगह पर जाता हूँ तो वहाँ पर मुबशराना खिदमत यानी कि खुशखबरी का पैगाम देता हूँ। तो हम सबको इस खुशखबरी के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि पालूस रसूल कहता है जब हम रोमियो 1 बाब उसकी 16वीं आयत को देखते हैं तो पालूस कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं, अंजील से शर्माता नहीं, अंजील का मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी किस बारे के बारे में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में भेज दिया। बहुत से लोग कहेंगे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा किस तरह है, रूहानी मायनों में अगर कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि हाँ यीशु मसीह खुदा का बेटा है रूहानी लफ्जों में, क्योंकि खुदा की कुदरत से वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी पाता है। तो पालूस कहता है कि मैं अंजील से यानी कि खुशखबरी देने से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, यानी वो यहूदियों के लिए भी राह निजात है और यूनानियों यानी कि हर गैर कौम के लिए भी वो राह निजात है और अबदी जिंदगी का वसीला है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में मुबशराना खिदमत से शर्माना नहीं चाहिए और इस जमीन पर रहते हुए खुदा के कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है और इसके लिए भेजा जाना जरूर है। हमें खुदा का कलाम बयान करता है कि मुबशर क्या करता है, वो दुनिया को जाकर बताता है जैसे रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है मगर खुदा की बख्शिश हमारे यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। मुबशर का ये पैगाम है। मुबशर 3 बाब उसकी रोमियो 3 बाब उसकी 23 आयत को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और मुबशर जब खुदा का कलाम लोगों तक लेकर जाता है तो वो बहुत सी मुख्तलिफ आयात को इस्तेमाल करता है, जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 36वीं आयत, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसी की है लेकिन जो बेटे की नहीं मानता हमें जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। और इस खिदमत में हम इन आयात को याद कर सकते हैं दूसरों को बताने के लिए, जैसे फिलिपियों 2 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है और ना ईमान के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। मुबशर की ये खिदमत है। पालूस रसूल जब तमोथियस को मुकरर करता है कि तू पादरी की खिदमत को, जब मौका मिले मुबशर की खिदमत को अंजाम दे, जब तुझे मौका मिले मसीह की गवाही देने के लिए तो उसके लिए तू तैयार रह। इसलिए हमें इस हिस्से को पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आपको बहुत बरकत मिलेगी। दूसरा तमोथियस उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। पालूस रसूल तमोथियस को कहता है, खुदा और मसीह यसु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके जहूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। पालूस उसे कहता है कि मैं यसु मसीह और उसके मुर्दों में से जी उठने को याद तुझे दिलाते हुए तुझे नसीहत करता हूँ कि तू कलाम की मनादी कर। क्या कर? कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, यानी कि हर वक्त तैयार रह। अगर कोई तुझसे तेरी उम्मीद, तेरी निजात, तेरे बारे में पूछे तो उसके लिए हर वक्त तैयार रह। हर तरह से तहम्बल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। ये ऐसा दौर है जिसमें आज हम भी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब आप किसी को तालीम और सच्चाई की बातें सिखाएंगे तो वो सच्चाई की बातों से कान को ऐसे करेगा कि बातों को सुनना ऐसे कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, जिसे कहा यहाँ पर कहा गया है कानों की खुजली के बायस, यानी कि सुनकर सुनना लेकिन उसे कबूल ना करना। और लोग क्या करेंगे? अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे और बहुत से उस्ताद बना लेंगे। लेकिन पालूस खुदावन का बंदा तमोथियस को कहता है, अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर। लोग क्या करेंगे? अपने आप को, अपने कानों को, यानी कि सुनने को, अपनी तवज्जो को, कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवजा होंगे। झूठी कहानियां, जिसे कह सकते हैं कि इबलीस के ख्वाब, झूठी कहानियां मसीह के बारे में, बुरी तालीम, गलत बिदात, गदी तालीमात और गलत सोचों के पीछे लोग भागेंगे। लेकिन पालूस उसे कहता है, मगर तू सब बातों में होशियार रह। हमें भी सब बातों में होशियार रहने की जरूरत है ताकि हम मसीह के अच्छे और सच्चे गवाह ठहरें। दुख उठा, पालूस रसूल कहता है कि तुझे दुख उठाने होंगे। मसीही जिंदगी दुखों से भरी हुई जिंदगी है, लेकिन इसके आखिर में और इसके दरमियान में मसीह का सुकून और इत्मीनान हमारे साथ रहता है। बशारत का काम अंजाम दे। बशारत किसे कहा गया है? खुशखबरी, यानी कि मुबशर, मुबशराना खिदमत को अंजाम दे। मुबशर क्या करता है? बशारत देता है। बशारत किसे कहा गया है? खुशखबरी का पैगाम सुनाना। अपनी खिदमत को पूरा कर, पालूस रसूल से नसीहत करता है कि अपनी खिदमत को पूरा कर। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में भी जानने की जरूरत है कि हमारी खिदमत, हमारा काम क्या है। याद रखें कि आप यसु मसीह के चलते फिरते खत हैं। आप यसु मसीह की खुली अंजील बन सकते हैं। किस तरह? आपका बोलना, आपका बैठना, आपकी दुआ को जिंदगी, आपकी परहेजगारी, आपका ईमान, आपकी ईमानदारी, आपका अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करना दूसरी कौमों के लिए क्या है? खुली अंजील है। आप खुली चलती फिरती क्या है? यीशु मसीह की खुशखबरी हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम यीशु मसीह की चलती फिरती खुशखबरी हैं? सवाल ये है कि जब लोग हमें पढ़ते हैं तो क्या वो मसीह के नाम को पढ़ते हैं या फिर किसी और को, या वो आसमानी बातों को जानते हैं या फिर दुनियावी बातों को। सो हम चलते फिरते मसीह के क्या हैं? खत हैं, मसीह की अंजील हैं। मसीह हमारे वसीला से दूसरों तक जाहिर होता है। सवाल ये है कि क्या हम उसे जाहिर कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या हम उसकी खुली अंजील हैं, चलती फिरती उस खुशखबरी को अपनी जिंदगियों से जाहिर कर रहे हैं या नहीं? पालूस रसूल तमोथियस को कहता है कि अपना उठना, बैठना, बोलना, चालना, कलाम करना, दुआ करना, हर वक्त तैयार रहना, दूसरों के लिए क्या बन? बरकत का बायस बन। हम सब के लिए भी खुदा ने बहुत से लोगों को मुबशर की खिदमत दी है, बशारत देने वाला, अंजील की मनादी करने वाला। आप भी खुदा से पूछें कि आपकी खिदमत क्या है, ताकि ये कलीसिया, आरवाला की कलीसिया तरक्की करे, ताकि जिसके वसीला से आपको कलाम की बरकत मिली है, मिलकर उसके बदन की तरक्की हो। और आप सबको इन बातों को जानने की ज़रूरत है। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और इन बातों पर गौर व खौज करें।